ओम शांति। तो आज का टॉपिक है गुरुर की मुक्ति। उसका पर्व है गुरु पूर्णिमा। कल ही पूरे देश भर में बहुत ही उमंग और उल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। तो इस गुरु पूर्णिमा में दो शब्द आते हैं, एक है गुरु और दूसरा है पूर्णिमा। तो गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं गु प्लस रु इज इक्वल टू गुरु। और गु माना डार्कनेस अंधकार, और रु माना जो अंधकार को मिटाए, और इसलिए गुरु माना जो अंधकार को मिटाता है उसका नाम गुरु कह दिया। ठीक है। फिर दूसरा शब्द है पूर्णिमा। अब पूर्णिमा माना क्या होता है? पूर्णिमा माना जिस दिन चांद अपनी 16 कलाओं में खिला हुआ होता है। और हम सबको पता है कि चांद सूर्य से रोशनी प्राप्त करता है, और सूर्य से रोशनी प्राप्त कर कर के 16 कला बन चुका है। लेकिन ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, ये जो पूर्णिमा है, कौन से मास की पूर्णिमा है? आषाढ़ मास की पूर्णिमा है ये, और इसीलिए इसको आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। अब आषाढ़ मास की क्या विशेषता है? अब देख रहे हैं बारिश हो रही है, आसमान में घने घने काले काले बादल छाए हुए होते हैं, और जिस कारण से भले ही क्यों न चंद्रमा ने सूर्य से रोशनी प्राप्त करके अपनी उच्चतम स्थिति को, उसकी उच्चतम स्थिति है 16 कलाओं से संपूर्ण हो जाना, उस स्थिति को प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन वो स्थिति प्राप्त करने के बाद उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से वनस्पतियों में रस भरता है ना, तो पृथ्वी तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ अपने में भर लिया उतना ही काफी नहीं है। भरने का पर्पस क्या था? कि वो मेरी रेस किरणें, वो रोशनी इस धरती पर पहुंचे जिसके आधार से वनस्पतियों को रस निर्माण कर सके। परंतु बीच में आ गए हैं काले काले घने घने बादल, और इसलिए उन किरणों का जो रास्ता है कि जिस रास्ते से किरणें धरती पर पहुंचनी है, वो रास्ते में ही ब्लॉकेज है, अवरोध है। तो जब तक उस अवरोध को नहीं तोड़ा है, तब तक भले ही पूनम के चांद क्यों नहीं बन गए हैं, तो भी वो कोई काम का नहीं रह जाता है। और वो अवरोध तोड़ने के लिए, क्योंकि वो अंधकार का काम कर रहा है ना, तो उस अवरोध को तोड़ने के लिए ही गुरु की जरूरत है। फिर कि गुरु माना जो सिर्फ प्रकाश दे, जो ज्ञान दे उतना ही नहीं, गुरु माना जो अज्ञान को तोड़कर ज्ञान तक पहुंचाए, गुरु माना अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले चले। डायरेक्ट प्रकाश मिल गया, डायरेक्ट ज्ञान मिल गया, वो गुरु का काम नहीं। गुरु का काम है आप अंधकार में फंसे हो, आप अज्ञानता में फंसे हो, उस अज्ञानता से, उस अंधकार से बाहर करना। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व नहीं तो देखो शरद पूर्णिमा के दिन भी तो पूर्णिमा खिला रहता है और कहते हैं उस दिन उसकी रोशनी बहुत अधिक होती है, उस दिन तो उसकी रोशनी बहुत अधिक होती पूरे साल भर। और ये भी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से मानो रस टपकता, और इसीलिए वो सिस्टम है कि खुले में वो चांदनी की रात मनाई जाती है, खीर रखा जाता है कि उसकी रस की किरणें उसमें पड़ेगी और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो सबसे ज्यादा रोशनी वाला चंद्रमा तो वो है शरद पूर्णिमा का, तो मतलब प्रकाश दे रहा है ना, लेकिन उसको गुरु पूर्णिमा नहीं बोला। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा को बोला कि जहां भले प्रकाश की एक्सट्रीमिटी पर पराकाष्ठा तक चंद्रमा पहुंच चुका है, लेकिन रास्ते में अवरोध अभी भी है। ऐसे ही हमने पहले दिन ही आपको कहा था, यहां पर ज्ञान जो आपको मिलेगा नया नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सब पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हो, बहुत कुछ ज्ञान सुन लिया है, सुना है ना, बहुत कुछ पढ़ लिया है और सेम बात को वैरायटी लोगों से सुना है, लेकिन वो काले काले बादल अभी तक नहीं हट रहे हैं, है ना। कि ज्ञान तो बहुत आ गया है, बहुत। एक होता है, कहते हैं कि तीन स्टेज पर गुरु की आवश्यकता होती है। कहते एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि जीवन में गुरु का क्या रोल है, उसकी आवश्यकता क्यों है और कब है। तो अकबर बीरबल ने कहा, जहां पना मैं इसका जवाब आपको 12 साल के बाद दूंगा। और इस दरमियान उसने क्या किया, कुछ दूध पीते बच्चों को जंगल में लेके गया और उन बच्चों के लिए एक आया नियुक्त कर दी कि जो उनकी देखभाल करे। पर जो आया नियुक्त की वो गूंगी आया थी। कौन सी आया? गूंगी आया। अब 12 वर्षों के बाद बीरबल जंगल से उन बच्चों को लेकर आया, अकबर की दरबार में पेश किया। और जब वो बच्चे दरबार में पेश हुए हैं तो दरबार में क्या देखा गया कि वो बच्चे जो हैं जानवरों की भांति अजीबोगरीब आवाज में बोल रहे हैं। नेचुरल है, किसके साथ रखा गया है? गूंगी आया के साथ। अब गूंगी ने तो कुछ आवाज निकाला ही नहीं, फिर जंगल में रखा तो जंगल में तो जानवर थे, उनकी ही आवाज उन्होंने सुनी, तो वही उन्होंने सीख ली, अपने लिए एक नई भाषा सीख तैयार कर ली। और उन बच्चों की दृष्टि से वो भाषा उनके लिए परफेक्ट, क्यों? क्योंकि वो अपने आप उस भाषा से कम्युनिकेट कर ले रहे थे, मैसेज उनका कम्युनिकेट हो जाता था। लेकिन हमारी दृष्टि से जब दरबार में पेश हुआ तो बाकी लोग तो नहीं समझ रहे ना उसकी भाषा, भले वो बच्चे आपस में समझ रहे हैं लेकिन दरबार में पेश हुए हैं तो चूंकि वो भाषा जानवरों जैसी है, वो भाषा इंसानों वाली नहीं है, तो बाकी लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं उनके पास वो इंसानों की भाषा, इंसानों की भाषा उनके कान में कभी गई ही नहीं ना, उनके कान में तो सदा जानवरों की गई, और इसलिए वो उनके लिए स्वाभाविक था। पर दरबार में जब आए तो दरबारियों के लिए वो स्वाभाविक नहीं था। तो अकबर भी बहुत आश्चर्य में पड़ गया और आश्चर्य में आकर उसने कहा कि इन बच्चों को लेके जाओ यहां से और इन्हें भाषा सिखाओ। और बीरबल ने अकबर की बात पर सहमति जताई और उन्हें भाषा सिखाने के लिए लेकर जाने के लिए तैयार हुआ। तो अकबर कहते हैं, ठहरो, ये तो बच्चों के संबंध में ने जो बात कही आप उसका पालन करने जा रहे हो, लेकिन मेरा जो सवाल था उसका उत्तर कहाँ आया? अभी उसका सवाल था ना कि जीवन में गुरु का रोल क्या है, और उसने कहा था 12 साल बाद बताऊंगा, तो 12 साल के बाद बच्चों को लेकर आया था। तो कहते मेरे प्रश्न का जवाब कहाँ है? कहा, जहां पना, आपके प्रश्न का जवाब आ गया है। का कैसे? देखो आपने क्या कहा, इनको लेकर जाओ और इनको भाषा सिखाओ, क्योंकि इनकी जो भाषा है वो सही वाली भाषा नहीं है, लेकिन इनके जीवन में सही वाली भाषा आ जाए तो आपने गुरु का ही तो कार्य किया। गुरु क्या करता है? गलत रास्ते से सही रास्ते पर लेके आता है। वो जानवरों की भाषा बोल रहा है, हालांकि उनमें इंसान के बच्चे हैं ना, तो इंसान के बच्चे होने के नाते उनके अंदर वो पोटेंशियल भरा पड़ा है कि अगर आप उनको इंसानी भाषा सिखाओ तो सीखेंगे, परंतु मार्ग किसी ने दिखाया नहीं तो पोटेंशियल अंदर का अंदर दबा पड़ा है, लेकिन आपने अभी मार्ग खोल दिया कि जाओ इन्हें भाषा सिखाओ, इनको ट्रेन करो, इनको समझ दो, इनको अंडरस्टैंडिंग दो। तो आपने क्या किया? गुरु का ही तो रोल किया ना। तो ऐसे यहां पे तो ये इंसान होते हुए भी जानवर की तरह पेश आए, लेकिन उन्होंने पेश होना चाहिए था इंसान के रूप में, और इसलिए कहा गया भाषा सिखाओ, और इसलिए वो जैसे कि अकबर ने गुरु का ही रोल किया। ऐसे हमारे जीवन में क्या हो रहा है? हमारे अंदर देवत्व का पोटेंशियल भरा पड़ा है। कल बता रहे थे ना सूर्य भाई कि अंदर भरा पड़ा है, आज साइंस स्वीकार कर रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में क्या दिखा रहे हैं? देवत्व दिखता है या असूर्य दिख जाती है? रावणपना दिख जाता है ना हमारे से भी। तो हमारे जीवन में भी गुरु का रोल चाहिए ना फिर, कि जाओ इनको सही भाषा सिखाओ, देवत्व की भाषा सिखाओ। तो हमारे जीवन में गुरु ये रोल प्ले करता है कि अंदर में पोटेंशियल देवत्व का है, लेकिन प्रैक्टिकल में है ही नहीं, वो उसका अपोजिट, तो इनको समझ देता है फिर वो गुरु हमारे जीवन में। और हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि भक्ति मार्ग में हमने कितना ही कोशिश किया जीवन की सच्चाई को जानने के लिए, कहीं जप किए होंगे, कहीं तप किए होंगे, कहीं दर्शन किए गए, कहीं व्रत, परंतु फिर भी समझ में ही नहीं आया। लेकिन परम सदगुरु हमारे जीवन में आए, शिव बाबा, और उसने कहा कि जीवन, जैसे उनको कहा गया तुम जानवरों के बच्चे थोड़ी हो, तुम तो इंसान के बच्चे हो, ऐसे ही भगवान ने आकर कहा तुम शरीर थोड़ी हो, तुम तो आत्मा हो, और आत्मा रूप में अपने सत्य स्वरूप में ठीक मेरे जैसे हो, डिट्टो कापी हो मेरी, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? प्रैक्टिकल में क्या है? आज हमें कोई देखकर कहेगा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा? हमको कोई गुस्सा करते हुए देख ले और बोलेगा ऐसे? हाँ, कहीं लोभ कर रहे हैं, कहीं मोह कर रहे हैं, हाँ, कहीं काम विकार, कहीं लोभ विकार हमारे से दिख जाए और कोई हमको कहेगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा? नहीं कह सकता है। लेकिन अगर वो देवत्व की झलक आए हमारे जीवन से तो बेशक कहेगा हमको देखकर कोई भी कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो वो परम सद्गुरु हमारे जीवन में आया और बताया, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो मेरे ही जैसे पॉइंट ऑफ लाइट हो, आत्मा हो, और उस आत्मा में ही सारा पोटेंशियल भरा पड़ा है। आत्मा के भीतर है, आत्मा में भरना नहीं है, आत्मा के भीतर है। उसको जगाने की ट्रेनिंग, उन बच्चों को तो इसीलिए कहा ना, इंसान के बच्चे हैं, पोटेंशियल है, इंसान जैसे बोल सकते हैं, पर आज दिन तक ट्रेनिंग नहीं मिली, समझ नहीं मिली, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली। जाओ इनको ट्रेन करो। ऐसे भगवान हमारे को ट्रेन कर रहा है, बैठ के ट्रेन करने आया है ना हमें, तो वो हमारा परम सद्गुरु। तो हमें ट्रेन किया, हमें ज्ञान दिया, तो समझ में आया गुरु की आवश्यकता क्यों है, कि जब तक वो नहीं था, गलत मान्यताओं में, गलत आदतों से जकड़े हुए। मान्यता थी मैं शरीर हूं, लेकिन सही कर दिया कि मान्यता कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। जैसे वो बच्चे जंगल में थे तो उनको लगा जैसे जानवर आवाज करते वैसे हमको भी करना है, क्योंकि आया जो मिली वो तो गूंगी थी, कभी आवाज ही नहीं सुनी, इंसान की आवाज होती कैसी है। तो कभी किसी ने हमको इसमें बताया ही नहीं था कि आत्मा के रूप में अपने आप को अभ्यास करना होता है, ये तो परम सद्गुरु ने ही आके हमें बताया। तो अब फिर हम अभ्यास करना शुरू करते हैं, फिर बताया कि कब कब, अब क्यों जरूरत है और कब कब जरूरत है, ये भी प्रश्न है कि गुरु का जीवन में क्या रोल है, क्यों आवश्यकता है और कब है। तो एक है उस सत्य को पाने की जिज्ञासा जगाने के लिए भी तो रोल है ना। हम देखो यही तो काम करते, हम जग गए तो बाबा कहते तुम जगे, जाके सबको जगाओ, और सबको जगाने के लिए सीधा बाबा का ज्ञान नहीं दे सकते। आत्मा परमात्मा डायरेक्ट नहीं सुनेंगे, लेकिन कम से कम अपनी गैदरिंग में हमको खड़ा होने तो दे, तो हम उनकी प्रॉब्लम को लेकर टेंशन मुक्त जीवन का लेक्चर दे देते हैं, और उसमें थोड़ा सा लास्ट में बोल देते हैं ये सब है ना, आत्मा परमात्मा को समझने से, योग करने से अपने आप ठीक हो जाता है। तो क्या कर दी उनमें, जिज्ञासा जगा दी। तो थोड़ा सा सुना, फिर लिटरेचर दे दिया हमने उनको। तो कोई होते हैं जो लिटरेचर पढ़कर सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, मोटिवेशन आ जाता है, लेकिन कईयों को मोटिवेशन अपने आप नहीं आता है, तो उनके पीछे और लगना पड़ता है। मतलब प्रारंभिक स्टेज में भी गुरु चाहिए, उसके बाद एक बार ज्ञान सत्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा तो जगा दी। जब जिज्ञासा जगा दी, प्यास जगा दी, तो अब प्यास बढ़ेगी ना, और प्राप्त करूं, और प्राप्त करूं, और समझूं। तो उस और समझ को भी कई लोग पढ़ के और सुन के समझ लेते हैं, और कई लोग को नहीं, हमको फलाने से क्लास करा दो तो हम समझे या करें, जो भी हो, है ना। तो दूसरी स्टेज में भी, और तीसरे स्टेज में भी फिर क्या होता है कि अभी सब समझ में तो आ गया है, ज्ञान बाबा ने जो बोला है, मुरली से कुछ भी प्रश्न पूछ लो, शायद टीचर बहन भी फेल हो जाएगी आंसर करने में, लेकिन सभा वाले पास हो जाएंगे, क्योंकि मेमोरी शार्प होती है ना कईयों की, तो सब आंसर कर देंगे, टीचर भी फेल हो जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ ज्ञान अर्जित करना हमारा अंतिम लक्ष्य है? अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वरूप बन जाना, अनुभव की अथॉरिटी बन जाना, हमारे प्रैक्टिकल जीवन से वो ज्ञान उतरे। जैसे लोग कहते हैं ना, ज्ञान में चलता हूं पर ज्ञान मेरे अंदर अभी आया नहीं। कई बार लोग हंसी में कहते हैं ना, बहन जी ज्ञान में तो इतने वर्षों से हूं पर मेरे अंदर ज्ञान अभी इतने वर्ष है ना। अनुभव में, स्वरूप में, जिसको हम कहते हैं कि अभी अभी जीवन में जो ज्ञान की धारणाएं आती है प्रिंसिपल से, अभी अभी जीवन में उतारना शुरू किया है। और फिर ज्ञान को फिर पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं और उससे भी भरपूर हो जाते हैं। पर ज्ञान की जो अवस्था होनी चाहिए, कौन सी अवस्था, कि डार्कनेस पूरा मिट जाए, सदा ही प्रकाश और प्रकाश में जिए, वो स्थिति है हमारी। हम आज भी डार्कनेस में हैं, इसका प्रमाण क्या है? या हम प्रकाश में जीते हैं, इसका प्रमाण क्या है? डार्कनेस क्या है? जैसे कहा कि अज्ञान, अज्ञानता क्या थी कि हमने देह को समझा मैं, और बाबा आए आके क्या बोला, तुम देह नहीं तुम आत्मा हो। ठीक है, तो जब तक मालूम नहीं था तो हम बॉडी कॉन्शियस में जी रहे थे, और जब मालूम हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, सोल कॉन्शियस में जीना चाहिए। पर जीते कितना है वो हर एक अपने आप को चेक कर ले, है ना। जीना तो चाहिए, पर ये भी पता है कि ऑल ऑफ ए सडन 100% चेंज थोड़ी आएगा, क्योंकि 63 वर्ष जन्मों के हमारे संस्कार बने हुए हैं ना। तो मैं कितना तक आगे बढ़ी हूं भाई, अंधेरा भी कितना मिटा है वो भी तो चेक होगा ना। इतने बड़े हॉल में अगर अंधकार है, लाइट चली गई, मैंने मोमबत्ती जलाई, लेकिन जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अनुसार जितनी लाइट होनी चाहिए वो एक मोमबत्ती इनफ नहीं है, और करना पड़ेगा ना प्रबंध। इंटेंसिटी होती है ना उसकी भी, तो कि डार्कनेस कितनी भागी, एक मोमबत्ती से कितनी भागेगी, तो बढ़ाना पड़ेगा ना अमाउंट, और तो वो हमें चेक करना होगा ना कि बाबा के ज्ञान में तो आ गए, ज्ञान तो समझ लिया है, लेकिन स्वरूप कितने बने हैं। और वो जो कहा स्वरूप बनने के लिए, जो आज बाबा ने कहा, क्या कहा आज बाबा ने, साइलेंस का अभ्यास करने वालों को क्या कहा, घड़ी की आवाज भी अच्छी नहीं लगती है, स्वीट साइलेंस की अभ्यास में हमें उतरना है। परम धाम जो निर्वाण धाम है, जहां वाणी नहीं है, उस वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचना है, उस स्वदेश में, उस निर्वाण देश में रहकर उस परमात्मा के सानिध्य में बैठकर साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। आज यही कहा है ना बाबा ने। तो ये जो हमारा डार्कनेस नहीं जा रहा है ना, डार्कनेस मीन जैसे का अज्ञान, हमारा अज्ञान अभी तक नहीं गया है, उसके साइन क्या है, उसके साइन, उसकी निशानी है, आज भी हम काम विकार से ग्रसित होते हैं, क्रोध विकार से ग्रसित होते हैं, लोभ विकार से ग्रसित होते हैं, मोह विकार से ग्रसित होते हैं, अहंकार से, ईगो से ग्रसित होते रहते हैं। ये बहुत बड़ा साइन है हम अभी भी बॉडी कॉन्शियसनेस में है, डार्कनेस में है। अगर हम सोल कॉन्शियसनेस में होते तो हमारा काम विकार शुभ भावना में परिवर्तित हो गया होता। अगर हम सोल कॉन्शियस में होते, हमारा क्रोध करुणा में बदल गया होता। सहन शक्ति माना ही क्या, सामने वाले की संस्कारों के अनुसार मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को डावाडोल नहीं होने दिया, ये भी तो एक तरीके की करुणा ही है ना। क्रोध नहीं किया, सहन किया, माना करुणा ही तो बरसाई ना। तो मेरा क्रोध करुणा में बदल गया होता, मेरा लोभ किसमें बदल गया होता? लोभ माने क्या? आसक्ति, चाहिए चाहिए चाहिए। तो अगर मेरा अभ्यास बदला, ये सोल कॉन्शियसनेस होती मेरे में, मैं उजियाले में हूं, अर्थात मेरे में उपराम वृत्ति आ जाए, मेरे में अनासक्त वृत्ति आ जाए, चाहिए चाहिए के बदले में इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आ जाऊं, चाहिए चाहिए के बदले में जाइए जाइए करूं मैं, लेना है के बदले में मैं देना है देना, ये स्थिति में जब पहुंचूं, तब मैं समझूं ना कि मैं डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ी हूं। फिर आता है ये तो लोभ, फिर मोह। गीता का आरंभ मोह से हुआ है और समाप्ति नष्टो मोह। तो कैसे मोह नष्ट हुआ, क्या बोला उसने? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो क्या स्मृति आई? तो क्या स्मृति आई? जीवन का सत्य क्या है और असत्य क्या है, सारभूत चीज कौन सी है और जो चीज आज है कल नहीं रहेगी वो क्या है। तो जो आज है कल नहीं रहेगी उसके प्रति अटैचमेंट क्यों रखूं मैं? उसके प्रति तो वैराग्य ही होना चाहिए ना। लेकिन जो सदा रहेगी उसके साथ मेरा प्रेम हो जाए ना, उसके साथ मैं अटैच हो जाऊं ना। सदा कौन रहने वाली है? आत्मा। सदा कौन है? पिता परमात्मा। और इसलिए सदा मैं आसक्त इधर मोह में फंसे रहने के बजाय, मोह में क्या होता है, मैं तो इसके बिना नहीं चल सकती, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूं, छूटने हैं सब संबंध, लेकिन बाबा नहीं छूटना है। और इसलिए अब वो मोह किस में बदल जाए? सच्चे प्रेम में, कि अब मुझे बाबा और बाबा के सिवाय, सेवा के सिवाय रहा नहीं जाता। और लास्ट अहंकार, देहाभिमान। कितनी समान की लिस्ट दी है बाबा ने, हम समान में टिकते हैं या मैं सीनियर, तुम्हारे से ज्यादा सीनियर हूं, मैं तुमसे ज्यादा वेल्दी हूं, कौन से समान है हमारे व्यवहार में? जब आते हैं तो कौन सा काम कर जाता है उससे पता चलेगा मैं डार्कनेस से बाहर निकल के लाइट में पहुंची भी हूं या नहीं पहुंची हूं। और उसके लिए ही ये साइलेंस की आवश्यकता है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो भी, ये तो बाबा पांच और इनके फिर पूरी जनरेशन है। तो हम जब परमधाम से नीचे उतर के आए थे तब भी तो आत्मा और शरीर था, तब भी तो आत्मा और शरीर से ही जीवन जिया ना सत्युग में। ऐसे थोड़ी कि बिना शरीर के साथ जीवन जिया, परंतु क्या विशेषता थी उसमें? उसमें विशेषता ये थी कि मन हमको नहीं चलाता था, हम मन को चलाते थे। हम मन के गुलाम नहीं थे, मन हमारा गुलाम था। हम मन के अधीन नहीं थे, मन हमारे अधीन था। और चूंकि मन हमारे अधीन था, तो मेरी जो आत्मा की जो ओरिजिनल कोर क्वालिटीज है, कोर वैल्यूज है, वो ऐसे रेडिएट हो रही थी। प्रैक्टिकल जीवन में हम जो एक दूसरे के साथ संपर्क संबंध में थे, प्यार से चल रहे थे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे थे, जीवन में उमंग था, उल्लास था। लेकिन चलते चलते क्या हुआ, आत्मसमृद्धि वहां नेचुरल थी। यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं, वहां अभ्यास नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ का अभ्यास का वो परिणाम था। जैसे नहीं, लट्टू आपने खेला है बचपन में, हाँ, लट्टू जब हाथ में उठाओ और रस्सी, फिर ऐसे बांधनी पड़ती है और फिर ऐसे फेंकना पड़ता है। तो जो बहुत समय से वो कर रहा है, तो वो कैसे बांधना है उसको, उसका सलीका भी रहता है और फेंकने का भी सलीका रहता है, जिस कारण से जब वो फेंक दिया गया है वो इतना ब्यूटीफुली घूम रहा है और इतना फास्ट घूम रहा है कि गति में होते हुए भी लगता है वो एक जगह खड़ा है, क्योंकि बहुत फास्ट है ना। लेकिन समय के साथ साथ उसकी गति क्या होती है, धीमी होती है, तब एहसास होता है कि घूम रहा है। और समय और आगे बढ़ता है और गति कम होती है, तब लग रहा है अभी थोड़ा लड़खड़ाना भी शुरू किया है। और समय आगे बढ़ता है फिर तो और एक बच्चा जब देखता है कितना सुंदर चलाया भैया ने या इसने जो भी उनके सामने है, तो बच्चे माना देखकर सीखने वाले, फिर वो भी उठाता है, फिर वो भी करता है, पर एकदम से तो अच्छी से नहीं, लेकिन हिम्मत तो नहीं हारता है ना। और हिम्मत नहीं हारता है तो एक दिन उसका भी, तो अभी हम सब वही कर रहे हैं, सोल कॉन्शियस से भले स्लिप हो जाते हैं लेकिन प्रैक्टिस तो चालू है ना हमारी, और यही प्रैक्टिस हमारे को एक दिन एक्सपर्ट बनाएगी, और वही एक्सपर्ट वाली हमारी प्रैक्टिस नेचुरल रूप से हमारा भावरा मतलब आत्मा आत्मसमृद्धि में चलती रहेगी, चलती रहेगी। और इसलिए मन वगैरह सब हमारे अधीन होंगे, हमारे को अपने अधीन नहीं करेंगे। लेकिन फिर द्वापर में क्या हो गया, जैसे कहा कि भौरा क्या हो गया, फ्लैट हो गया, तो द्वापर आते आते सोल कॉन्शियस जीरो चली गई, तो बॉडी कॉन्शियस आ गई। और बॉडी कॉन्शियस बाबा ने यही बताया ना कि जैसे ही तुम्हारे में बॉडी कॉन्शियसनेस आई, विकारों की उत्पत्ति हुई। और इसीलिए मैं काम क्रोध लोभ में अभी भी फंस जाती हूं, तो चेकिंग कहां करना है, कहां से उत्पन्न होते हैं ये, बॉडी कॉन्शियसनेस से। तो तुरंत वहां करेक्शन करना पड़ेगा या नहीं, तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस ही तो समर्पण करना है भगवान को, गुरु को। यही तो गुरुर है, यही तो गुरुर है। जब इस गुरुर से मुक्ति नहीं होगी सच्चे अर्थों में, भले हम ज्ञान से भरपूर हो गए, योग में बैठते कमेंट्री करते अच्छा अनुभव हो भी जाता है, लेकिन कहा चंद्रमा की रोशनी धरती पे जाके धरती का कल्याण करे, बीच में बादल नहीं होना चाहिए। तो हम तो योग से उठने के बाद कितना कल्याण कर पाते, हर एक अपने आप को चेक करे। अभी अभी तो मैंने बहुत सुंदर अनुभूति की थी प्रेम की, और प्रैक्टिकल में आते ही मैंने उसके साथ घृणा भी कर ली, गुस्सा भी कर लिया। तो क्लियर है कि बादल है, काले काले घने घने बादल है। और इस काले काले घने घने बादलों को जब तक गिराएंगे नहीं, या जब तक हवा का जोरदार झोंका उसको ढकेले नहीं, तब तक उसकी रोशनी नीचे नहीं आ सकती। अर्थात हमारा सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आ सकता है। भले अभ्यास में आधा घंटा बैठे भी, हर एक अपने आप को अपने दिल से ईमानदारी से बात करे, आधा घंटा तो बैठा था लेकिन सचमुच आधा घंटा सोल कॉन्शियस था क्या, क्या आधा घंटा उसके साथ कनेक्ट था क्या, वो तो हर एक अपना अपना चेक करेंगे ना। तो हवा का झोंका या तो जोर से आए कि बादल को दूर फेंक दे जहां चंद्रमा है, या तो फिर वो काले काले बादल बरस के नीचे गिर जाए। पानी बरसेगा तो खत्म हो जाएगी ना वो। तो सब कुछ बाबा को बॉडी कॉन्शियसनेस समर्पण। इसलिए कहते हैं एक शिष्य था जो गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके आश्रम में रहा, और जब शिक्षा पूरी हुई तो जाने लगा। जाने लगा तो शिष्य को लगा कि मैंने गुरु से इतनी शिक्षा प्राप्त की है, उनका मुझ पर इतना एहसान है, तो मुझे दक्षिणा देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, लेकिन गुरु तो बिल्कुल ही निस्वार्थ था। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे अलग से कुछ भी नहीं चाहिए। पर शिष्य को ये बात जच नहीं रही थी कि नहीं, आप मुझसे कुछ भी मांगिए दक्षिणा में, मुझे ऐसे मन को तसल्ली नहीं हो रही है। तो गुरु ने उनकी बार बार की रिक्वेस्ट से कहा, अच्छा, अगर कुछ देना ही है दक्षिणा के रूप में, तो इस धरती पर जो सबसे व्यर्थ चीज है, जो फालतू है, जो अननेसेसरी है, वो मुझे दे दो। थोड़ा सोच में पड़ा, कौन सी चीज है इस धरती पे फालतू? आगे बढ़ता है, भाई जाके देख के आऊं ना धरती पे कौन सी चीज फालतू है, तो लेके आऊं और इनको दक्षिणा में दान करूं। तो जाता है, आगे बढ़ता है, तो कटीली नुकीली झाड़ियां भी दिखती है, तो उसको लगता है ये कांटे तो फालतू है, अननेसेसरी है। तो थोड़े से कांटे की डंगाल तोड़ के लाता है और गुरुजी को कहता है, गुरुजी ये धरती पर व्यर्थ चीज है और आपने वही कहा था, तो मैं आपको दक्षिणा में ये दे रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, आपने ऐसे कैसे समझ लिया कि ये कांटे व्यर्थ है? ये कांटे ना हो तो गुलाब की सुरक्षा ना हो, ये कांटे ना हो तो फसलों की सुरक्षा ना हो। किसान अपने खेती की जो बाड़ बनाता है, किससे बनाता है? बाड़ से ही तो बनाता है, कांटों से ही तो बनाता है। तो आपने ऐसे कैसे समझ लिया? पैर में जब कांटा भी चुभे तो उस कांटे को निकालने के लिए भी कांटा ही चाहिए होता है। आपने ऐसे कैसे समझ लिया कि ये व्यर्थ चीज है? रियलाइजेशन हुआ, फिर चला भाई और कोई चीज देख कर आऊं कि क्या व्यर्थ है। तो गया, चलते चलते देखता है तो धूल ही धूल उड़ रही है। तो कहा, ये भी तो फालतू, पैरों के तले रौंदी जाती है। तो मुट्ठी पर धूल लेके आ गया। कहता है, गुरुजी ये मुझे धरती पर व्यर्थ चीज महसूस हुई, मैं लेके आया, आपको ऐसे कैसे लगा कि ये व्यर्थ चीज है? का पैरों तले रौंदी जाती है ना? का भले पैरों तले रौंदी जाती है, पर यही तो मिट्टी है जिसमें थोड़ा सा पानी डालो और बीज डालो तो अंकुर निकल के वृक्ष निकल के आता है, फसलें तैयार होती है। यही तो धरती मिट्टी है जिसमें पानी डाल के फिर कंस्ट्रक्शन भी होता है। आपने ऐसे कैसे समझ लिया इसको कि ये व्यर्थ चीज है? अब तो शिष्य के बस की बात नहीं रही। कहा, गुरुजी फिर आप ही बताइए कि जो व्यर्थ चीज हो आप बताइए तो मैं आपको दे दूं। गुरुजी ने कहा, भीतर झांको, अपने अपने भीतर ही आपको व्यर्थ की चीज दिखाई पड़ेगी। जब भीतर झांका, रियलाइज हुआ और कहा, गुरुजी ये देह अभिमान व्यर्थ का है, ये आपको समर्पित है। यही गुरुर है, ये गुरुर से मुक्ति। और तब गुरु ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको स्वीकार किया, तुम सदा तुम्हारा जीवन निष्कंटक रहेगा, फलता फूलता रहेगा। आज भी बाबा ने कहा ना, डबल आशीर्वाद मिलती है आपको। हाँ? बाप तीन रूप से आज दिलाया यार, गुरु माने टीचर, बाप टीचर और गुरु। बाप रूप से भी आशीर्वादी मिलती है और गुरु रूप से भी वरदान और आशीर्वादी मिलते, तो आपको डबल आशीर्वाद मिल रही है। तो ये बाबा भी जब गुरु को उसको अर्पण करेंगे ना, तो डबल आशीर्वाद करेगा। और ये डबल आशीर्वाद मुझे मिले, मैं गुरूर से मुक्त हूँ, उसको समर्पण करूँ, उसका एक ही तरीका है जो कहा ना कि द्वापर से मन हावी हुआ कारण था हम बॉडी कॉन्शियस में आए। आज हम जब योग भी करते हैं तो कौन बीच में खड़ा हो रहा है? मन ही तो खड़ा हो रहा है, और कौन खड़ा हो रहा है बीच में? हम तो सोच रहे हैं मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु, और मन एक बीच में से दूसरा विचार लाके खड़ा हो जाता है। तो ये मन जो है, इससे विचार भी न उठे, उसी को बाबा ने कहा साइलेंस। हमने क्या सोच लिया है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम सुनते आ रहे थे ना कि योग माना विचार शून्य अवस्था, और यहाँ पे आए तो बोला नहीं नहीं ऐसे थोड़ी, विचार शून्य अवस्था तो मन की कभी होती ही नहीं है। हमको यही सिखाया ना आते ही हमको, अरे मन जिसका काम ही है सोचना, वो विचारों से मुक्त कैसे हो सकता है? परंतु मन को आराम भी तो करना है या नहीं करना है, रेस्ट भी तो करना है या नहीं करना है। तो देखो, हम तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं। जागृत अवस्था में मेरी बॉडी भी फंक्शन में है, मेरा माइंड भी फंक्शन में है, इसको जागृत अवस्था। जब हम सोते हैं तो बॉडी को शट डाउन करते, नहीं जैसे दुकान शट डाउन, माना बॉडी को शट डाउन करते, माना काम कुछ नहीं लेना, माना शट डाउन हुआ ना। तो बिस्तर पे तो लेट गए, माना बॉडी तो शट डाउन किया, पर मन स्वप्न लोक में घूम रहा है, मतलब मन अभी शट डाउन नहीं हुआ है। समझ में आ रही बात? मन शट डाउन नहीं हुआ, इसलिए हम स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन फिर एक उसको स्वप्न अवस्था बोलेंगे। फिर तीसरी एक अवस्था होती है जहां मन भी शट डाउन हुआ था, और इसलिए जब सुबह उठे थे हमने कहा था आज रात को मैंने बहुत गहरी नींद की है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैंने गहरी नींद की ये मन को पता है, उसी ने तो बोला सवेरे। समझ में आई बात? वो मन को वो भी वो था, लेकिन उसका परसेंटेज। समझ में आ रही बात? तो इन तीनों अवस्थाओं में मन थोड़ा बहुत है, जागृत में तो है ही पूरा, स्वप्न में कॉन्शियस नहीं है, सबकॉन्शियस है, उसमें से निकल निकल के आ रहा है, पॉप अप हो रहा है। और फिर अगर गहरी नींद में भी थे तो उसने नोटिस किया कि मैंने गहरी नींद की। लेकिन एक चौथी अवस्था जिसमें मन मन नहीं होगा तो ईगो भी नहीं होगा ना। समझ में आ रही ना बात? उसको कहते हैं साक्षी अवस्था, कि जिस साक्षी अवस्था में मन से भी कुछ विचार अंकुरित नहीं हो, प्रस्फुटित नहीं हो। हाँ, उसके लिए प्रयास तो करते हैं, सफलता नहीं मिलती है ना, प्रयास तो चल रहे हैं ना, पर सफलता नहीं मिल रही। क्या उपाय है उसकी सफलता का, है ना? उसका एक ही उपाय है। थोड़ी दूसरी एक कहानी सुना देती हूँ कि एक गांव में एक जाट रहता था, खेती का काम करता था, परिवार का पालन पोषण करता था, और उसी गांव में कुछ साधु आए, कुछ समय के लिए ठहरे और फिर चल दिए। जब चलना आरंभ किया तो कटीला रास्ता दिखाई पड़ा, तो समझ गए कि हम रास्ता भूल गए हैं। तो सही रास्ते के लिए कोई हमें गाइड करे तो देखा आसपास कोई है तो आसपास नजर दौड़ाई तो वो जाट जो खेती में काम कर रहा था वो दिखाई दिया और उसको रिक्वेस्ट की कि हमें जाना है पर हम रास्ता भूल गए हैं, आप हमें गाइड कर सकते हो। वो आया उनके पास तो देखता है इनके पांव तो नंगे हैं, तो कहता है देखो रास्ता तो बहुत दूर है जहां आपने जाना है, मतलब ये कटीले वाले से बाहर निकलने के लिए रास्ता तो बहुत दूर है और आपके पांव में तो जूते भी नहीं हैं, तो आपको तो ये चुभेगी, आप कैसे चलोगे का, इसीलिए तो आपसे गाइडेंस मांग रहे हैं ना। इसने थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे रास्ते तो होते हैं ना, लोकल व्यक्ति को तो पता होता है ना, तो उसने थोड़ा सा विचार किया, कहा ठीक है एक काम करो, मैं आगे आगे चलूंगा और आप मेरे पीछे पीछे चलना। और फॉलो किया उन्होंने उसको और एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए कि जो रास्ता बिल्कुल अभी साफ है और वहां से अब उनको जहां भी पहुंचना है वो सीधा है, जैसे नाक बिल्कुल सीधी है। कहा गुरुजी अब यहां से बिल्कुल सीधा रास्ता है, कहीं नहीं मुड़ना है आपको। ऐसा बोल के वो साइड हो गया क्योंकि अभी गुरुजी ने जाना है, मैंने तो अपने काम पे लगना है। लेकिन गुरुजी ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे पर अपना समय निकाला, आपको हमारे कारण से असुविधा हुई, काम छोड़ के आया ना। तो कहा नहीं आप एक काम करो, अब जाते जाते मुझे भी कुछ ज्ञान की बात सुना दो जिससे मेरा जीवन भी सफल हो जाए। तो जैसे गुरुजी होते हैं उनको ज्ञान दिया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, गांव का तो था ना वो, तो उस हिसाब से बोला जमीन किसी की नहीं हड़पना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, आदि 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 बातें गुरु ने उनसे कही। तो ये जाट कहता है गुरुजी मैं जाट हूँ, बनिया नहीं हूँ, कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। जैसे मैंने आपको सीधा रास्ता दिखाया है ना बीच वाला पास करा के, ऐसे मुझे भी आप सीधा रास्ता दो। इतनी सारी बातें ना मुझे याद रहने वाली है, एक सीधा रास्ता दो। गुरुजी समझ गए कि ये पात्र है, तो उसको बस एक ही बात कही अगर सीधा रास्ता चाहिए तो, लेकिन है थोड़ा मुश्किल। कहनी आपकी कृपा होगी तो मुश्किल भी, क्योंकि मेरे में एक विशेषता है, मैं कोई भी एक पार पकड़ता हूँ ना उसमें दृढ़ता रख के उसको पार करता हूँ, ये विशेषता है। मुझे इतना सारा याद नहीं रहेगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर एक विशेषता तो है कि एक मुझे कोई रास्ता मिल गया, कोई बात मिल गई तो मैं उसके पीछे ऐसा पड़ता हूँ कि उसको पाकर ही रहता हूँ, इसलिए आप मुझे कहिए। तो कहा ठीक है, कभी भी मन के चलाए नहीं चलना, मन का गुलाम नहीं बनना, मन तो हमारा गुलाम है, मालिक अगर गुलाम की गुलामी करने लग जाए ये बात अच्छी लगती है क्या? और उसने इस बात को पकड़ लिया कि मन के चलाए नहीं चलना है। बस गुरुजी को तो कहा धन्यवाद, मुझे बात समझ में आ गई और अब मैं इसको पकड़ कर चलूंगा। तो उसने कहा इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। गुरुजी तो अपने रास्ते पे निकल पड़े और ये क्योंकि इसको वापस कटीले रास्ते से गुजरना था तो कहता जूते पहन लूं और चलूं। कहता नहीं ये कौन कह रहा है जूते पहनो और चलो, ये मन कह रहा है ना, मुझे मन के चलाए नहीं चलना है। जूते नहीं पहनता है, चलता नहीं है। फिर वहां पे धूप आती है तो वो धूप उसको अनुभव होती है, तेज लगती है। तो फिर सोचता है कि ये पेड़ है ना, इसकी छाया में बैठ जा। नहीं नहीं, ये कौन कह रहा है मुझे पेड़ की छाया में बैठने के लिए? मन कह रहा है, मन के चलाए मुझे नहीं चलना है। और इतने में उसकी पत्नी दोपहर का भोजन लेके खेत में पहुंचती है, देखती खेत में तो है ही नहीं चौधरी जी, पति साहब जी। इधर उधर नजर घुमाती है तो दिख जाते हैं। उधर आती है, भई कहाँ खेत छोड़ के चले गए हो, यहाँ क्यों खड़े हो, चलो भोजन करो। फिर बोलता है, ये कौन कह रहा है कि मुझे इनके साथ खाना खाना है? अभी मन कह रहा है, मुझे मन के चलाए नहीं चलना है। उधर आसपास लोग इकट्ठे हुए, इसने भाई देखो क्या हो गया, ये हिलता नहीं, डुलता नहीं, सुनता नहीं कुछ। लोग इकट्ठे हो गए, लोग भी उसको बोलने लगे, पर ये हिले ना, डुले ना, बोले ना। लोग बोलना शुरू कर दिए, लगता है इसने ज्यादा ही भांग पी ली। तो भी ये कुछ बोले ही नहीं। और ऐसे माना वो क्या है, मन को पकड़ा है उसने, मन के चलाए मुझे चलना नहीं है। और वहीं पे वो ऐसी स्थिति में पहुंचा है निर्विचार। और उस निर्विचार स्थिति में वो क्या हुआ है, अशरीरी, खड़े खड़े समाधिस्थ। और खड़े खड़े जो समाधिस्थ हुआ है, अर्थात अपनी ओरिजिनल स्टेट में आया है, साक्षी अवस्था में आया है। और साक्षी अवस्था में अर्थात बादल सारे हट गए हैं, चंद्रमा तो 16 कलाओं से भरपूर है, उसकी किरणें नीचे आने के लिए रास्ता क्लियर हो गया। और उसको कैवल्य जो कहते हैं ना, कैवल्य ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान भीतर में, कहते हैं ना ज्ञान कहीं से आता नहीं है, भीतर में है। प्रेम शांति बाहर से नहीं भरना है, भीतर में है। रास्ता ब्लॉक है, रास्ते को खोलो। और वो रास्ता खुलता है मन के चलाए नहीं चलने से, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं, रोज सवेरे अमृत वेले 3 बिंदियां लगाओ, जिसमें से पहली बिंदी होती है ड्रामा को फुल स्टॉप। तो लोगों को फिर प्रश्न आता है, ड्रामा को फुल स्टॉप कैसे करूं? तो ड्रामा से संबंधित कोई विचार आएगा ना, वहां हम योग करने बैठे तो ड्रामा में जो भी सीन घटी है उससे संबंधित ही कोई बात आएगी ना विचार के रूप में। तो जैसे इसने दृढ़ता पकड़ी ना जाट ने, मन के चलाए नहीं चलना है, उसमें बह नहीं जाना है, इतनी दृढ़ता रख के एक एक विचार जो आता जाएगा ना उसको सिर्फ देखना है। इसको कई बार लोग कहते हैं ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान देना है। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। जो मन चलाने की कोशिश कर रहा है मुझे, मैं ध्यान दूं, ये मुझे चला नहीं सके। और जब ये चला नहीं पाएगा मुझे, मैं रह जाऊंगी आत्मा बिंदी, और पिता परमात्मा भी मेरे बिंदी। मैं एकदम साइलेंस में, स्वीट साइलेंस में, उस परम धाम में बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, न तू कुछ कहे न मैं कुछ कहूं। इस स्थिति में हमें पहुंचना है, तब ये जो डार्कनेस है, काम क्रोध लोभ, ये गिरेगी। और तब ये लाइट जो है अंदर आत्मा में, ज्ञान भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है, खुशी भी है, आनंद भी है, वो प्रैक्टिकल जीवन में कर्म करते हुए हमारे से रेडिएट होगा, सामने वाले को फील होगा कि शांति का फलाने के सानिध्य में बैठो, शांति की फीलिंग आती है। फलाने से बात करो, प्रेम की फीलिंग आती है। फलाने के साथ अपनी बात शेयर किया, उसने ऐसी बात बोली, मुझे शक्ति आ गई, क्योंकि वो हमारे से रेडिएट हो तो अनुभव हो ना। तो ये डीप साइलेंस इतना करने के लिए ही तो हमने योग का एकांत का समय आप सभी को दिया। लेकिन शायद शायद कई समय के बाद मधुबन आते हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है मिलने करने की भी, है ना। तो कभी कभी उसमें भी हम उसका पूरा, हर एक ने प्रयास किया है लगभग, लेकिन थोड़ा थोड़ा, जैसे कहा ना कि कहीं तो किसी से मिलना है ना, किसी से बात करना है, वही तो टाइम है, नहीं तो पूरा ही तो फिक्स है, है ना। हमको तो पूरा ही तो टाइट करके रखा है, इधर उधर थोड़ा जाना है तो कब जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब एक लक्ष्य रखो कि जब घर हम लौटें तो थोड़ा सा ऐसे समय निकालें हम एकांत में रहने का। करना लगाना नहीं है, बोलना नहीं है, वो मन उठ के आएगा चलाने के लिए हमको, मुझे चलना नहीं है, तो सिर्फ उसको देखना है। ये मन का स्वभाव है, मन को जैसे बच्चे को आप अनाथ छोड़ दो ना बिना निगरानी के, वो कुछ ना कुछ उठक पटक उथल पुथल करेगा। लेकिन जिस घड़ी आपने छिपकर आके उसको यूं देखा, और जिस घड़ी उसको एहसास हो जाए कि कोई मुझे देख रहा है, उसकी हलचल धीमी धीमी होते हुए शांत हो जाती है। ये मन का भी बिल्कुल यही स्वभाव है, बिना निगरानी के अनाथ के समान इसको छोड़ देंगे, वो ऐसे उथल पुथल मचाएगा। लेकिन निगरानी रखेंगे, ठीक है तेरे को क्या बोलना है बोल, मैं देख रही हूं, धीरे धीरे वो बोलना बंद करेगा। तो एक स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप। अब मैं आत्मा बिंदी और पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु, परम धाम की रहने वाली परम धाम चले जाऊं, और स्वरूप दर्शन सिर्फ, क्योंकि आत्मा साक्षी दृष्टा माना, आत्मा न करता है न भोगता है, आत्मा तो ज्ञाता और दृष्टा है। तो दर्शन में लग जाओ सिर्फ, और उसी दर्शन के दरमियान हम उसके आमने सामने हैं, उसकी सारी एनर्जी डाउनलोड होके मेरे अंदर आएगी और मैं भरपूर हो जाऊंगी। जो मैंने अपनी मेहनत से बादल को एक हवा के झोंके से साइड किया है, उस साइड में पड़ा हुआ भी उसकी शक्ति से जल के भस्म हो जाएगा। तो इस लेवल तक हमें पहुंचना है कि ज्ञान से सिर्फ भरपूर हो गए इनफ नहीं है, ज्ञान स्वरूप बनना है। तब सच्चे अर्थों में हम कहेंगे गुरु को हमने गुरु दक्षिणा में अपना गुरुर दे दिया, उससे मुक्त हो गए, और हम आषाढ़ की पूर्णिमा से शरद की पूर्णिमा तक पहुंच गए, रास्ते के सारे बादल क्लीन हो गए और सारे संसार को रस देने के योग्य बन गए। ओम शांति।
मत सवारने को।